अध्याय 5 प्रेम का स्वरूप। अन्यान्य रीतिबद्ध कवियों की भांति घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम का केवल चित्रण ही नहीं किया है, वरन अपने जीवन में भी ये प्रेम मार्ग के धीर पथिक रहे हैं। जीवन परिचय के संदर्भ में हमने इस तथ्य पर विचार कर लिया है कि सुजान के प्रति इनका प्रेम विषम सिद्ध हुआ। अपने काव्य में भी इन्होंने अधिकांशतः विषम प्रेम की पीड़ा को अंकित किया है। घनानंद का जो भी ज्ञात जीवन वृत्त हमारे सामने है, उसे ध्यान में रखकर यदि उनका काव्य पढ़ा जाए तो लगता है कि इन्होंने सुजान के साथ अपने संबंधों को ही बार बार दोहराया है। इनके संयोग चित्रण को भी देखने पर यही लगता है कि इस अनुभूति को भी कवि ने अपने वियोग काल में ही काव्यबद्ध किया है। इसलिए उस पर भी विषम प्रेम जन्य वेदना की गहरी छाया मंडराती हुई दिखाई देती है। भारतीय काव्य परंपरा के साथ ही सामाजिक परंपरा की दृष्टि से भी विषम या एकतरफा प्रेम की स्वीकृति नहीं मिली है। हमारी काव्यशास्त्रीय परंपरा में फरकिया प्रेम को अत्यधिक विस्तार मिलने के बावजूद एकतरफा प्रेम को असामाजिक मानकर निषिद्ध ठहराया गया है। प्रिय की निर्मम उपेक्षा के बाद भी उससे एकनिष्ठ भाव से प्रेम किए जाना भारतीय प्रेम पद्धति के नितांत विरुद्ध है। फारसी काव्य में सूफी प्रभाववश इस प्रकार के प्रेम को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। घनानंद के साथ ही अधिकांशतः रीतिमुक्त कवियों पर भी इस प्रेम पद्धति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बोधा में फारसी शब्दावली का प्रचुर प्रयोग फारसी काव्य के ढर्रे पर मिलता है। यह उनके फारसी साहित्य से परिचय का सूचक है। घनानंद का फारसी भाषा से परिचय इनकी वियोग वेली, इश्कलता आदि रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। प्रेम के विषय रूप और उसकी पीड़ा परकता की दृष्टि से भी घनानंद पर फारसी साहित्य का प्रचुर प्रभाव है। इनके भड़ौआकार ने तो इन्हें फारसी का भाव और मजमून दोनों की चोरी करने वाला कहा है, लेकिन यह प्रभाव केवल प्रेरणा तक ही सीमित है। जिस प्रकार इन्होंने फारसी के एकतरफा प्रेम को सुजान के माध्यम से अपने जीवन में उतारा है, ठीक उसी प्रकार फारसी की लाक्षणिकता को अपनी भाषा की उपेक्षित सामग्री लोकोक्ति मुहावरे रूढ़ लक्षणावादि में ढाला है। यही स्थिति ठाकुर की भी है। लोकोक्ति और मुहावरों की जो छटा ठाकुर में मिलती है, उस पर कहीं से भी फारसी की छाप नहीं देखी जा सकती। विषम प्रेम के संबंध में उनका एक उदाहरण है, वा निर्मोहिन रूप की राशि जो उरहित न ठानत हुई हैं, बारहो बार अविलोक घरी घरी सूरत तो पहचानित हुई हैं, ठाकुर या मन की पर दीति हैं जो पसनेह न मानत हुई हैं, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष है कि जानत हुई हैं। यहाँ प्रिय को निर्मोही बताया गया है, लेकिन उसके क्रियाकलाप से इसी प्रकार की निष्ठुरता नहीं दिखाई गई। प्रेमी मात्र इसलिए उसके निकट से बार बार गुजरता है कि नायिका उसके शक्ल सूरत को पहचान ले। प्रेमी केवल इस विश्वास से संतुष्ट है कि यदि नायिका प्रेम न भी करती होगी, तब भी वह इतना अवश्य समझती होगी कि मेरे लिए वह नित्य आता है। यह एक तरफा प्रेम की एक स्थिति है जिसमें प्रेमी को पता लग जाना पर्याप्त है कि उसके प्रेम को जानता है। लेकिन फारसी साहित्य के प्रेम पद्धति की चरम दशा तो यह है जहाँ प्रिय की उपेक्षा के बावजूद प्रेमी एकनिष्ठ भाव से प्रेम किया जाता है, केवल इस आशा पर कि यदि कभी उसकी सहानुभूति मिल जाए। यदि उसे यह भी विश्वास हो जाए कि प्रेम साधना में उसकी मृत्यु के बाद प्रिय के मुख से करुणाजनित सहानुभूति के दो शब्द निकल जाएंगे या उसकी आंखों में दो बूंद आंसू आ जाएंगे, तो प्रेमी प्रसन्नतापूर्वक प्राणोत्सर्ग के लिए भी तैयार हो सकता है। लेकिन ठाकुर की ऐसी स्थिति नहीं है। वैसे तो बोधा भी यह स्वीकार करते हैं, हमको वह चाहे कि चाहे नहीं, हमें नेह को ना तो निबाहनो है, लेकिन वह इस स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं कि विष खाए मरे कि गिरे गिरते दागदार ते यार कभी न करें। समूची रीतिमुक्त काव्यधारा में घनानंद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने एकनिष्ठ भाव से दागदार से यारी की है। प्रिय की लाख उपेक्षा और निष्ठुरता के बावजूद प्रेम के प्रति उनमें कहीं विचलन नहीं दिखाई देता। प्रिय की निष्ठुरता को जानते हुए भी उसके प्रति एक निष्ठ भाव से उन्मुख रहना, प्रेम को साधना की अपेक्षा साध्य मान लेना, प्रिय के हृदय में अपने प्रति प्रेम को असंभव मानते हुए घनानंद की विरहणी कहती है। चंद चकोरी की चाह करे घन आनंद स्वात पीहा को धावे, जो तरसैन त्रस रैन की ऐन बसे रवि बीन पद्वीन हुए सागर आवय, मोस तुम्हें सुनुजान कृपान दुनेह निबाहि यूं छवि पावें, ज्यों अपने रुचिराच कुबेर सुरंग कह लय निज अंक बसावें। अनुपस्थित प्रिय को संबोधित कर विरहणी कह रही है कि जिस प्रकार चंद्रमा चकोर से प्रेम करने लगे, स्वाति जल प्रेमातुर होकर पपीहे के पास आए, सूर्य तरह से रेणु यानी धूल के चमकदार सबसे छोटे कण के घर में निवास करने लगे। समुद्र अनाथ होकर मछली के पास दौड़ा आए। धन के अधिष्ठाता कबीर अपनी इच्छा से अनुराग पूर्वक किसी अति निर्धन को अपनी गोद में बिठा ले। जिस प्रकार ये सभी बातें असंभव हैं, ठीक उसी प्रकार आपका मेरे साथ प्रेम निर्वाह भी असंभव है। इस एक तरफापन के बावजूद एक निष्ठ भाव से प्रिय के प्रति समर्पण घन आनंद के प्रेम की बहुत बड़ी विशेषता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिहि भांति न हो दुख सूल सहो, नहीं आवनि औधिन रावरी आस, इते पर एक सी बाट चहो। यह देखिय कारण मेरी दशा, को बुझे तो ऊपर कौन कहो, जे अनेक विचार के देहु बताए, हहा पिय दूर थी पाय गहूँ। प्रिय ने अपने आने की न कोई निश्चित अवधि दी है और न ही उससे इस प्रकार की आशा ही की जा सकती है। फिर भी मेरा हर एक निष्ठ भाव से उसकी आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। एक तरफा प्रेम में इस प्रकार की एक निश्चितता फारसी काव्य की विशेषता है। फारसी प्रेम पद्धति की एक निश्चितता और सूफियों के प्रेम के पीर को घनानंद ने अत्यंत सहज रूप में अपनाया है। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार की एक निश्चितता और प्रेम पीर कवि द्वारा कहीं से उधार ली गई है। अपने वस्तुगत परिस्थितियों के फलस्वरूप ये दोनों विशेषताएँ उसकी काव्य जीवनधारा और भावधारा के साथ संश्लिष्ट होकर कविता में आई हैं। इस वेदना का मूल स्रोत कवि जीवन का एक तरफा है, किंतु एक निष्ठ प्रेम रहा है। विरहणी का केवल प्रिय से यह पूछना कि मेरी अकारण विरहावस्था को देखकर कोई पूछेगा तो मैं उत्तर क्या दूंगी, तुम स्वयं सोच कर इसे बता दो। नायिका की यह मनोदशा स्थिति को अत्यधिक हृदय द्रावक बना देती है। यहाँ आकर अविचलित एक निष्ठता फारसी पद्धति की एक तरफा प्रेम को भारतीय आचार निष्ठा और प्रेमादर्श से समन्वित कर देती है। घनानंद के प्रेम के स्वरूप को यदि इस संदर्भ में देखा जाए तो उसमें स्वच्छंदता, परम साहसिकता, घोर रूपा शक्ति, गहरी तन्मयता, भावानुकूलता, निष्कामता आदि प्रेम की अनन्य विभूतियाँ विषम प्रेम को संचित कर उसे एक अभिनव आचार से जोड़ती हैं। अतः एक तरफापन या विषमता को केंद्र में रखकर उक्त विशेषताओं की विवेचना द्वारा हम घनानंद के प्रेम के स्वरूप को आसानी से समझ सकते हैं। घनानंद के प्रेम के स्वच्छंद स्वरूप को यदि गहराई से देखा जाए तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उसका वास्तविक अभिप्राय प्रेम के स्वच्छंद पीड़ा या सामाजिक विधि निषेधों की अस्वीकृति मात्र नहीं है। यह स्वच्छंदता विषम प्रेम की एक निश्चितता से अनुशंसित है, जिसके मूल में परम सहसाहसिकता के दर्शन होते हैं। अंतर रहो किधव अंतर हो, दीर्घ फार फिरो कि अभाग निभिरो, आग जरो अकी पानी फरो, अब कैसे करो ही का विधि धीरो, पाँव कहाँ हरी हाय तुम्हें, धरनी में धसों के आकाश है चीरों। यहाँ भी रहने का उद्दाम आवेग प्रकट हुआ है। वह अनुपस्थित प्रिय को संबोधित करके कह रही है कि तुम मेरे हृदय में हो या अन्यत्र कहीं, इसका मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। अतः तुम्हें आंखें फाड़ कर बाहर खोजूँ या अपने भाग्य को रो, तुम्हें प्राप्त करने के लिए आग में जलूँ या पानी में डूबूँ, अब क्या करूँ और किस प्रकार अपने हृदय को धीरज बधाऊँ। अरे प्रिय, तुम्हारी प्राप्ति के लिए पृथ्वी में धसो या आकाश को चीरूँ। इस प्रकार की अधीर साहसिकता के पीछे एक विशेष प्रकार की दृढ़ता है जो कभी कभी हठ या चुनौती की सीमा तक पहुंच जाती है। तुम दीन पीठ दीठ की निसन्मुख याने, तुम पैंडे परे राख रहियो या प्राण को, तुम बसो न्यार या ने कहु न होत होए, तुम दुखदाय करें सुखदान को, सुन घन आनंद सुजान हो अमोह तुम, या को महामोह मो बिना न जाने आन को, और सबे सहो कछु कहो न कहा है बस, तुम्हें बद तोंप जो बार जी रखो ध्यान को। यह अनुपस्थित प्रिय को संबोधित करते हुए रानी कह रही है कि बिना किसी उपालंब के मैं सब कुछ सह रही हूँ और इसके लिए विवश भी हूँ, लेकिन तुम्हें तब मानो जब तुम मेरे ध्यान को भी रोक दो। जिस प्रकार से तुम विमुख हुए हो उसी समय से इसने तुम्हारी ओर दृष्टि की है, अर्थात तुम्हारे सम्मुख हुआ है। तुम मेरे जिन प्राणों के पीछे पड़े हो यह उसकी निरंतर रक्षा कर रहा है, अर्थात तुम्हारे मन में ही मैं जीवित हूँ। तुम मुझसे अलग रहते हो लेकिन यह मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। तुम मुझे दुख देने वाले हो लेकिन यह मुझे निरंतर सुख देता रहता है। तुम मेरे प्रति निष्ठुर हो लेकिन यह मोह से ग्रस्त होकर मेरे अतिरिक्त और किसी को जानता भी नहीं। हट की सीमा तक पहुंची हुई इस साहसिकता का आधार एक निश्चितता है। इसमें यदि कहीं उलाहने की बात आती भी है तो वह आक्रोश विहीन एक असहाय व्यवस्था के रूप में है। तेरी देख बहु कौ सब ही त्यों देख करे, तू जो न देखो तो दिखाओ काही गतिरे, सुन निर्मोही एक तू ही सुलगाव मुही, सोही कहीं कैसे ऐसी निठुराई अतिरे। विष सी कथान मनि सुधा पान करो जान, जीवन निधान है विसास मति मारी रे। जाति जो जाही जो भजे सुताही तजय घनानंद क्यों, अति के हूतनि कहो काहू पाई पति रे। प्रेमी और प्रिय के मध्य या वैषम्य मूलक विरोध भाव केवल प्रिय पक्ष से है। प्रेमी की सर्वात्मा मना समर्पण भावना को यह विरोध पुष्ट करता है और कष्ट सहन से लेकर आत्मपीड़न तक के लिए प्रेरित करता है। अपने इस रूप में घनानंद के यहाँ प्रेम कीड़ा विलास न होकर एक कठोर साधना बन गया है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी देव से रैन प्राण घट घोटी भो। हेत खेत चूरी धूरी चूरी चूरी सांस पांव राके विष समुदेग बान आगे न ओटी भो। ज्ञान प्यार जोर मन आन तो घनानंद, मुझ तू न सू मेरी परे को चट चख चोटी भो। तीने यो सिराती छाती तो ही वह लगती ताती, तेरे बाटे आए हैं अंगारे ने पह लोटी भो। विष के घरों को चूर कर देने वाली भीषण विरह दशा को स्वीकार कर रात दिन प्राणों को शरीर के अंदर घोटते हुए प्रेम किरण क्षेत्र की धूल में अपनी सांस को चूर चूर करते हुए विरह जन व्याकुलता के विषाक्त बाणों की घाव को अपने सीने पर साहसपूर्वक झेलने वाले प्राणों को विरहणी धैर्य बंधाती है। वह कहती है कि यदि इतना सब कुछ करने पर भी प्रिय अनुकूल नहीं होता तो तुम उसके प्रेमपूर्ण कटाक्ष से घायल होने की व्यथा पर भूल कर भी पश्चाताप न करो, क्योंकि जिसमें तुम्हें पीड़ा होती है उसी में उनका हृदय शीतल होता है। अतः तुम इस बात को तय मान लो कि अंगारों पर लेटना अर्थात कष्ट सहन करना ही तुम्हारे भाग्य में आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद के स्वच्छंद प्रेम में निहित साहसिकता आत्मनिग्रह से अनुशासित है। बाह्य विधि निषेधों के उल्लंघन के बावजूद इसमें एक सदाचार मूलक नैतिक आत्मानुशासन मिलता है। अतः स्वच्छंदता और साहसिकता घनानंद के यहाँ फारसी साहित्य में से भिन्न भारतीय आचार और शील से समन्वित होकर आई है। प्रिय के प्रति अशेष भाव से आत्मसमर्पण विदेशी प्रभाव का परिष्कार करते हुए उसे देश की आदर्श परंपरा से जोड़ता है। घनानंद के प्रेम में इस प्रकार की कृष्णता और अदम्य साहसिकता का मूल आधार है घोर आसक्ति। इनका प्रेम साहचर्य जन न होकर प्रथम दर्शन जन्य है। अतः यहाँ आसक्ति मुख्यतः रूप आसक्ति है जिसका कारण प्रिय का अद्भुत सौंदर्य है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लागे रही चाह की। दूसरा, जब ते निहारे नाखन सुजान प्यारे, तब ते गही है उर आन देखबे की आन की। तीसरा, जब ते सुजान प्यारे पुत्रीन तारे, आखिन बसे हो सब सुन जग जाही है। चौथा, वह रूप की राशि सखी लखी तब ते, जब ते सखी आखिन कय हटतार भई। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि घनानंद के यहाँ प्रेम का आधार प्रिय का आधार सौंदर्य है। इसमें दर्शनाभिलाष ही सबसे प्रमुख है। वो रूपाशक्ति और देखने की अदम अभिलाष अभियोग के साथ ही इनके संयोग चित्रण में भी समान रूप से मिलती है। इस आसक्ति में न कहीं गार्हस्थ जीवन के अपेक्षाएं हैं और न ही काम वासना का शारीरिक संपर्क की आकांक्षा। इसे मिलती एक अशेष अभिलाषा जो कभी पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। लगिए रहे लालसा देखन कही भांति भटु निसी देव से कटें, करी भीर भरी यह पीर महाविरहा तन को ही में न हटें। तन आनंद जान संयोग समय विसमय बुद्धि एक बेरे बटे, सपने सुतरे फिर सौगुण चेतक बाढ़त डाढ़त घोटी घटे। निरंतर देखते रहने की अभिलाषा के कारण नायिका का रात दिन व्यतीत कर पाना कठिन हो गया है। संयोग के समय विरह की महान पीड़ा हृदय से एक पल के लिए भी नहीं हटती। संयोग की घड़ियों में बुद्धि इतनी चकित हो जाती है कि वे स्वप्न की भांति बीत जाती है। उसके बीतते ही देखने का मोह बढ़कर शरीर को जलाते हुए मथने लगता है। इस प्रकार संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में प्रिय को मन भर देख पाने की साध कभी पूरी ही नहीं होती। इस तथ्य को एक दूसरे उदाहरण द्वारा और अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। भोरते सांझ लो कानन और निहारति बांवरे नेकुन हारती, सांझ ते भोर लो तारन ताकि बोतारन सो इक तारन टारती। जव कहूँ भव तो दीठ परे घन आनंद आसन अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगे रहे आखिन गे और आरती। यद दिख साध बिहार आदि अन्य समसमय कवियों से पर्याप्त भिन्न है। इसमें कहीं भी लुका छुपी या मिलन के मौन संकेत नहीं मिलेंगे। साथ ही इसमें मध्या नायिका के काम और लज्जा के मध्य की स्थिति भी नहीं मिलेगी। यहाँ प्रिय के अंदर तक उतर जाने या उसे अपने अंदर उतार लेने के सब कुछ देख समझ लेने की आतुर आकांक्षा है। इसलिए वियोग की भांति ही संयोग में भी प्रिय को उर को भर आँख देख पाने की लालसा बनी ही रहती है। सामान्यतः संयोग के समय आसक्त कुछ बाह्याचरण की ओर उन्मुख होती है, उसकी वास्तविक तीव्रता वियोग में देखने को मिलती है, लेकिन घनानंद के यहाँ वह संयोग और वियोग दोनों में समान रूप से बनी रहती है। आसक्ति की इस तुल्यता के कारण इनके संयोग और वियोग दोनों की स्थितियों के चित्रणों में एक गहरी तन्मयता मिलती है। इस तत्व को स्पष्ट रूप से समझने के लिए संयोग का एक उदाहरण लिया जा सकता है। सुनरि सजनी रजनी की कथा इन नयन चकोरन ज्यों बितई, मुखचंद सुजान सुजीवन को लकिपाय भय कछु रीति नई, अभिलाषन आतुरताई घटा तबही घन आनंद आनिछई, सुबिहाति न जानि परिभ्रमसी कब हुए विश्वासनी बीती गई। यह नायिका द्वारा सखी के सम्मुख अपने संयोग के समय के अनुभव का वर्णन है। इस काल के देव मतिराम पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवियों के लिए इस तरह के प्रसंग अत्यंत आकर्षक रहे हैं। उनके यहाँ नायिकाएं अपने संयोग कालीन सुखद अनुभवों को अत्यंत उत्साह के साथ अपने सखियों के सामने विस्तार से प्रस्तुत करती हैं। रूप गर्विता और गुण गर्विता नायिकाएं तो इस प्रकार के सुखद अनुभवों का अतिरंजित वर्णन करने में आघाती ही नहीं, लेकिन घनानंद के यहाँ इस प्रकार के अनुभव के वर्णन में भी कोई विशेष उत्साह या विशेष रुचि नहीं लक्षित होती। प्रस्तुत सवैये में नायिका प्रिय मिलन से प्राप्त अनुभव का अत्यंत असंतोष के साथ सखी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मिलन काल में प्रिय के मुख को देखते ही कुछ विलक्षण सा घटित हुआ। प्रिय के सम्मुख उपस्थित होते ही दर्शनाभिलाषा के आधिक्य ने मुझे इस प्रकार घेर लिया कि विश्वासघात निरात किस प्रकार भ्रम की भांति बीत गई मुझे पता ही नहीं लगने पाया। संयोग काल की यह तल्लीनता जिसमें मिलन सुख का कहीं पता नहीं लगता, वियोग काल में कुछ और ही रूप धारण कर लेती है। अभिलाखन लाखन भांति भरी वरुणीन रोमांच भय कांपत हैं, घन आनंद जान सुधाधर मूर्ति चाहनी अंक में चापत हैं, टगलाए रही पल पावण के सुचकोर की चोपहें झापत हैं, जब ते तुम आवन औधिवधि तब ते किया मग मापत हैं। जब से प्रिय ने आने की अवधि निश्चित कर दी है तब से वीरहणी की आंखें निरंतर उसका मार्ग नाप रही हैं। इस प्रक्रिया में लाख लाख अभिलाषाओं से युक्त होकर वरुणियों का कांपना, प्रिय की कल्पित मूर्ति का आंखों द्वारा प्रेम पूर्वक आलिंगन करना, उसके मार्ग में परख पावड़े बिछाकर टकटकी लगाए हुए चकोर की प्रतीक्षा को भी मात कर देना आदि क्रियाएं वीरानी की गहन तन्मयता को संकेतित करती है। झूठी दिलासा के प्रतीक्षा में लीन वीरानी की संपूर्ण व्याकुलता इस रवैये में मुखरित हुई है। इस प्रकार की तन्मय परीक्षा हमें मीरा के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगी। घनानंद के प्रेम के स्वरूप निर्धारण में घोर आसक्ति और तन्मयता के साथ ही भावना मूलकता का भी महत्वपूर्ण योग है। वस्तुतः यह ऐसी विशेषता है जो इनके एक तरफा प्रेम को एक गुरु गंभीर शील प्रदान करती है। प्रिय की निष्ठुरता को जानकर भी उसके प्रति एक अनिष्ट भाव से उन्मुख रहना प्रेम के लिए प्रेम करना है। प्रेम को साधन के स्थान पर साध्य मान लेना है। स्वयं पीड़ा सहकर भी प्रिय को कभी भला बुरा न कहना, उसकी निरंतर मंगल कामना करना, भावना को भावना के स्तर पर जीना है। घनानंद का प्रेम बहुत कुछ ऐसा ही है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जास प्रीत तहि निष्णुराई सो निपटने, कैसे करी जिये की जारने सुजताइये, रहन देन चैन को नील रेस पहिये, भाग आपन ही ऐसे दोष काहे धो लगाइये। प्रीत निष्ठुरता और अपने एक तरफा प्रेम से उत्पन्न विलक्षण पीड़ा से व्याकुल विरहणी प्रिय को दोषी न मानकर स्वयं अपने भाग्य को ही उत्तरदायी ठहराती है। अनुभय निष्ठ प्रेम की जलन का इजहार करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अस्वाभाविक है। इसलिए विरहणी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। वह अपने विरह वेदना को सहज रूप से सिर माथे लेकर प्रिय की मंगल कामना करती है। इत बाट परी सुधिरावर भूलन केश उराहन दीजियो जू, अब तो सब शीश चढ़ाई लई जो कछु मन माय सुजियो जू, घन आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारियो बात जीजियो जू, नित नी के रहो तुम्हें चाड़ पाड़ पय आशीष हमारियो लीजियो जू। वीरहणी का कथन है कि भाग्य के बंटवारे में मेरे हिस्से तुम्हारा स्मरण और तुम्हारे हिस्से में मुझे भूलना आया है, अतः तुम्हें उलाना भी कैसे दे सकती हूँ। मुझे जो कुछ मिला है उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे करो, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हारी चर्चा के कारण ही जीवित हूँ। मेरे प्रति तुम्हारी कोई उत्कंठा नहीं है, फिर भी तुम कुशल पूर्वक रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। यह प्रेम आदर्श की उस भूमि पर प्रतिष्ठित है जहाँ पहुंचकर प्रेमी अपने प्रेम का कोई प्रतिदान नहीं चाहता। वस्तुतः इस स्तर पर पहुंचा हुआ प्रेम अहेतुक या निष्काम बन जाता है। निष्कामता की स्थिति में प्रिय के अनिष्ट की आशंका मात्र से प्रेमी व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार की निष्कामता प्रेम को भक्ति की समकक्षता में स्थापित कर देती है। जिस प्रकार भक्ति की चरमावस्था में भक्त का भगवान के साथ एकात्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम के चरमावस्था में प्रिय के साथ एकात्म हो जाता है। इस संबंध में घनानंद ने प्रेम को भक्ति और ज्ञान योग से भी अधिक महत्व देते हुए लिखा है। चंद चकोर करें सो ससी देह धरे, मनसा हो रहे एक देख बुको रहे द्वय, ज्ञान होते आगे जाके पद भी परम ऊंची रस उपजाम, तम भोगी भोग जात गुमय, जान घनानंद नोख यह प्रेम पंथ, भूलते चलत रहे सुधित है चकित हुए, पूरे जिन मानो जो न जानो कछु सीख ले हो, रसना के छाले प्यारे प्यारे नेह नाव छमे। यहाँ कवि ने प्रेम योग को ज्ञान योग से भी उच्च भाव भूमि पर प्रदर्शित किया है, क्योंकि यह अपनी चरम स्थिति में चंद्रमा को चकोर और चकोर को चंद्रमा की स्थिति में ला देता है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार ज्ञान की चरम दशा में ज्ञात और किए में अद्वैत स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम की चरम दशा में प्रेमी और प्रिय का अद्वैत हो जाता है। लेकिन घनानंद ने चंद ही चकोर करे के माध्यम से सूफी प्रेम के उस दशा का संकेत किया है जिसमें परमात्मा स्वयं जीवन के मिलनातुर हो जाता है। प्रेम की इस अद्वैतता से उत्पन्न आनंद में भोगियों की भोग लिप्सा पूरी तरह तिरोहित हो जाती है। घनानंद का प्रेम निष्कामता के स्थिति तक पहुंचकर वासना विहीन प्रेम का रूप धारण कर लेता है। प्रेम के इस अनोखे पथ पर आत्मविस्मृत होकर ही चला जा सकता है, सतर्क होकर नहीं। अतः विषम होकर भी इनके प्रेम में अंततः एक समता की स्थिति मिलती है जो प्रेमी को बहुत बड़ा बना देती है। वस्तुतः यह सूफी प्रेम आदर्श है जिसमें फारसी प्रेम की एकनिष्ठता और एकांतिकता, सूफियों की पीड़ा, भारतीयता का आदर्श और भक्ति भावना का सुंदर पोट मिलता है। प्रेम के इस मिश्रित स्वरूप के संबंध में घनानंद ने लिखा है, प्रेम को मोहोद दे पार हरि कई विचार, पापुरु हरि बार हिते फेरी आयो है, ताही एक रस है बिबस अव गाहे दो, नहीं हरि राधा जी ने देखे सरसायो हैं, ताकि को तरल तरंग संग छटियो कन, पूरी लोक लोकने उमड़ी उपनायो है, श्री घनानंद सुजान लागे हेत होते, ऐसे मथि मन पर स्वरूप ठहरायो है। इस कवित्व के माध्यम से लौकिक और ईश्वरीय प्रेम के पारंपरिक संबंध के विषय में कवि की मान्यता स्पष्ट हुई है। अपने जीवन में बहुत मनन मंथन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रेम एक महासागर है, विचार द्वारा जिसका पार नहीं पाया जा सकता। प्रेमी युगल राधा और कृष्ण उस महासागर का विवश भाव से एकरस होकर अवगाहन करते हैं जिसके कारण वह उमंगित होता है। उनकी कीड़ा जनित उमंग से उठने वाली लहरों से छूटा हुआ एक तरल कण इस संपूर्ण लोक में उफन कर फैल गया है। वहीं उच्छिष्ट कण घनानंद और सुजान के लौकिक प्रेम का आधार बन गया है। उससे स्पष्ट है कि कवि ने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम का ही एक गोचर रूप माना है। इस ज्ञान के तहत ही उसका लौकिक प्रेम बाद में ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गया है। वस्तुतः मध्यकालीन चेतना की यह एक अनिर्भयता थी, अनिवार्यता थी, जिसे हम सूर्य, तुलसी, नंददास, मीरा, रसखान आदि में किसी न किसी रूप में अवश्य पाते हैं। घनानंद का लौकिक प्रेम भी प्रेम के विविध सोपानों से होता हुआ अंततः अलौकिक प्रेम अर्थात भक्ति में परिवर्तित हो गया है।